ओम शांति। मुरली जो रिवाइज करने के लिए दिया है 17569 की मुरली है, जादू मंत्र का दर्पण, जादू मंत्र का दर्पण। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट निकाला हुआ है अव्यक्त मिलन। तो बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी चीज हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हमें कुछ देना होता है, जैसे पहले बार्टर एक्सचेंज होता था, या कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसका कुछ मूल्य चुकाना होता है। तो यहां बाबा ने कहा कि अगर आपको अव्यक्त मिलन मनाना है तो उसका मूल्य चुकाना होगा, और अव्यक्त मिलन मनाने का जो मूल्य है वो है व्यक्त भाव को छोड़ना। जितना हम व्यक्त भाव को छोड़ते जाएंगे उतना अव्यक्त मिलन मनाते जाएंगे, और जो जितना अव्यक्त मिलन में होता है, अव्यक्त मिलन बाबा के साथ मनाता है, जितना अव्यक्त भाव में हमेशा होता है, यह अव्यक्त अमूल्य मिलन जो जितना मनाता है उसकी दो निशानी बाबा ने बताई है। इसमें सबसे पहला निशानी जो बाबा ने बताई है कि उनका हर कार्य जो है अलौकिक होगा, और दूसरा हर कार्य करते सदा वो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। हर कार्य अलौकिक होगा और हर कर्म करते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अमूल्य अव्यक्त मिलन। सेकेंड पॉइंट बाबा ने इसमें कहा है कि पुरुषार्थ में जब आगे बढ़ते हैं तो माया जो है अलग अलग रूपों में आती है, इतने माया के विघ्न आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो स्टार्टिंग में आपका स्लोगन था, दो स्लोगन बाबा ने इसमें बताए हैं कि संगम पर बाप का वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दो स्लोगन बाबा ने एकदम स्टार्टिंग में, जब 14 साल की भट्टी होती थी उस समय बाबा ने याद कराए थे, मतलब कि बताए थे याद करने के लिए। तो फर्स्ट जो है स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरा संगम पर बाप का वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दो पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है बाबा ने इसमें कहा है कि बाप का जो स्नेह है वो अविनाशी है, लेकिन बच्चों का जो स्नेह है वो हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। तो बच्चे जो है कभी संकटमयी हो जाते हैं और कभी स्नेहमयी हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा जो बाप के समान हमारा स्नेह जो है बाबा के साथ हमेशा अविनाशी होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो बाबा ने इसमें बताया हुआ है कि दर्पण। बाबा ने कहा दर्पण की बात की है कि जैसे स्थूल में भी हम अपने आप को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को दर्पण में देखो कि हमारे अंदर कौन सी कमी कमजोरी अभी तक रही हुई है, और वो दर्पण बाबा ने कहा है कि ये दर्पण जो है कभी हमारे पास होता है और कभी गायब भी हो जाता है। तो ये दर्पण है अपने आप को अर्पण करना। जितना हम अपने आप को अर्पण करते जाएंगे, सर्वस्व त्यागी बनते जाएंगे, उतना जो है हम अपने आप को इस दर्पण में देख सकते हैं, अपनी कमी कमजोरी को हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बाबा ने इसमें बताया हुआ है कि अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, पुरुषार्थ का समय चले गया, तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है 69 में बाबा ने कहा। तो इसमें बाबा ने तीन चीजें बताई है, एक है मनन, दूसरा है चिंतन, और थर्ड है मगन। तो चिंतन भी चलता है, मनन भी चलता है, लेकिन बाबा ने कहा कि इसकी जो थर्ड स्टेज है आगे की मगन, सदा उस अवस्था में रहना है। मगन अर्थात लवलीन अवस्था, सदा इस अवस्था में रहना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने कुमारियों से बाबा मिल रहे थे, तो उसमें बाबा ने कहा कि तिलक, तो बाबा ने कहा कि ये सबके सामने आपको तिलक लगाया जा रहा है, तो ये तिलक सबके सामने लगा रहे हैं, तो इस तिलक की लाज रखनी है। तो तिलक की लाज रखना माना ब्राह्मण कुल की लाज रखना, ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं, नियम है, उसकी लाज रखना, तो ये बाबा ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बाबा ने कहा है कि अंत में जब बाबा मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि सभी ने नयन मुलाकात की यथा योग्य और यथा शक्ति। तो बाबा ने इसमें कहा कि साकार समय से ही बाबा ये इशारा देते आ रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जब दूर बैठे केवल नयन मुलाकात ही होगी, और ये बाबा ने 69 में कहा है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठ के ही बाबा से मुलाकात होती है। तो बाबा ने कहा है कि ये मुलाकात वो कर सकता है जिसमें यथा योग्य होगा जो, और यथा शक्ति होगा वही ये नयन मुलाकात कर सकता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। तो ये सात पॉइंट बताए हैं बाबा ने मुरली में 17569 जादू मंत्र का दर्पण। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट इसमें बताया हुआ है बाबा ने जो मुरली में बताया है कि अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति के लिए जो है व्यक्त भाव को छोड़ना होगा। उसमें दो चीजें बाबा ने बताई, जो अव्यक्त स्थिति में हमेशा होंगे उनका जो है हर कर्म अलौकिक होगा और हर कार्य करते उन्हें अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। सेकंड पॉइंट जो इसमें बाबा ने बताया कि बाप का जो स्नेह है वो अविनाशी है, तो उस प्रकार हमारा स्नेह भी हमेशा अविनाशी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो बाबा ने इसमें बताया कि जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं तो माया आती है, तो उसके लिए दो स्लोगन बताए हैं, स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और संगम पर बाप का वर्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फोर्थ पॉइंट बाबा ने बताया कि दर्पण, जितना हम अपने आप को दर्पण में चेक करेंगे अपनी कमी कमजोरी हम भर सकते हैं, तो दर्पण है अपने आप को अर्पण करना, सर्वस्व त्यागी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ का समय चले गया, तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, तो इसमें तीन चीजें हैं, मनन, चिंतन और मगन। तो दो चीजें तो हर एक में है नंबर वन, लेकिन मगन अवस्था जो है थर्ड वाली लवलीन अवस्था, उसको आगे बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ, इसमें कुमारियों को तिलक देते हुए बाबा ने कहा कि तिलक सबके सामने लग रहा है, तो जब हम कोई भी चीज सबके सामने करते हैं तो उस चीज को हमें याद रखना चाहिए, तो इस तिलक की लाज रखना है। तिलक की लाज रखना माना ब्राह्मण कुल की मर्यादा का लाज रखना, ब्राह्मण इसकी लाज रखना हमारे कुल की। और लास्ट पॉइंट बाबा ने कहा है कि नयन मुलाकात, टाइम जो वैसा आ रहा है कि केवल नयन मुलाकात ही होगी और अभी भी हम देख रहे हैं, तो ये यथा योग्य यथाशक्ति, तो जिसकी जितनी शक्ति होगी वो उससे बाबा का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारे में खुद में ही शक्ति नहीं है, जैसे कई बार हम बता चुके हैं, अगर आपकी स्टेज अच्छी है तो आप एकदम पीछे बैठकर या दूर बैठकर अमेरिका में बैठकर भी वो अनुभव कर सकते हैं कि आप एकदम बाबा के सामने हैं, लेकिन अगर आपकी स्टेज ही अच्छी नहीं है तो आप बाबा के सामने स्टेज पर खड़े रहकर भी वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारी स्टेज के ऊपर निर्भर है। ओम शांति। जितना चिंतन मनन में रहेंगे तो अपने आप मगन अवस्था होती जाती है। मगन माना कोई अलग स्टेज नहीं है, लेकिन जैसे चिंतन करते हैं कोई भी चीज हमारी बुद्धि में कंटिन्यूस घूम रही है, तो अपने आप वो मगन अवस्था लवलीन अवस्था जो है हमारी होती जाती है, अलग से कोई करने का जरूरत नहीं पड़ता है उसके लिए। लेकिन ये कि अगर हमारा मनन चिंतन ही नहीं है तो हमारी मगन अवस्था हो ही नहीं सकती। तो मगन अवस्था जो है थर्ड ये है, वो रिजल्ट है। मगन में चिंतन बाधा है, लेकिन मगन जैसे बताया एकदम लास्ट की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, उसके बाद में थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में जब मगन अवस्था में जाते हैं तो उसमें भी चिंतन चलता है, लेकिन वो जो चिंतन चलता है हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, वो नेचुरल हो जाता है, ऑटोमेटिक चलता है फिर वो। नहीं, परमात्मा चिंतन भी एक्चुअली मगन में बाधा है जहां तक मुझे लगता है, कि अगर हम कंटिन्यू, आप जैसे हम योग में बैठे हैं, हम योग के लिए कहते हैं कि योग की जो ओरिजिनल स्टेज क्या है, कि बीज रूप अवस्था जो है योग की स्टेज है, लेकिन अगर आप गाना भी सुन रहे हैं बाबा का, कुछ चिंतन भी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो भी योग की है। नहीं, वो मगन अवस्था नहीं है। कुछ भी अगर आप अशरीरी बन छोड़ के बाकी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, बीज रूप अवस्था को छोड़ के बाकी कुछ भी कर रहे हैं, परमधाम की स्टेज छोड़ के बाकी की कुछ कर रहे हैं, वो योग नहीं है ना। बाबा ने कहा कि आपके जो विकर्म विनाश होते हैं केवल बीज रूप अवस्था में ही आपके विकर्म विनाश होते हैं, और वही ओरिजिनल योग है। तो जो बताया ना, प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को याद करते हैं, तो वो कोई योग थोड़ी खाया जाएगा उस प्रकार के आपका विकर्म विनाश हो रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। महारथीपन के लक्षण, 16 मई 1974। तो अच्छा, ऐसे सर्व इच्छाओं से मुक्त, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले बाप समान, दूसरा पॉइंट है बाप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी। पहला पॉइंट सर्व इच्छाओं को समाने वाले, दूसरा है कि बाप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी, तीसरा है सदा एक लगन में मगन, सदा एक की लगन में मगन। तो एक की लगन में मगन होना है। फिर एक रस स्थिति, चौथा पॉइंट है कि स्थिति कैसी हो, एक रस हो। पांचवा पॉइंट है कि एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। छठा जो पॉइंट है उसमें तीन बातें हैं, एक एकांत, एकाग्र, एकांतवासी और अंतर्मुखी, ये तीन पॉइंट है, छठा पॉइंट। और सातवां जो है कि बाप दादा के उम्मीदों के सितारों को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने सार में ही सातों पॉइंट बता दिए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। जो पहला पॉइंट है, तो बाबा ने आते ही प्रश्न पूछा है कि आज क्या इच्छा है, कुछ सुनने की इच्छा है या समान बनने की इच्छा है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है बच्चों को, क्या है आपकी इच्छा। फिर बाबा ने कहा, सुनते तो हो, लेकिन सुनते सुनते एक एक बाबा के जो महावाक्य है उनको समाते जाना है। जैसे जैसे हम समाते जाएंगे, तो बाबा ने कहा कि समान बन जाएंगे। और समान बने माना क्या होगा उसका रिजल्ट, कि आपके अंदर सामना करने की शक्ति आएगी। और सामना करने की शक्ति आएगी तो बाबा ने कहा कि आप क्या बन जाएंगे, विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। आप सामना करने की शक्ति आ जाएंगी तो विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है कि आकर्षण, चार प्रकार के आकर्षण बताए। एक तो स्वभाव, फिर संस्कार, फिर वस्तु और वैभव। तो ये जो आकर्षण है, इनके जो बंधन है, इससे बाबा ने कहा मुक्त हो जाएंगे। और फिर बाबा ने आगे प्रश्न पूछा है कि आप ऐसे मुक्त आत्मा हो, अगर आप महारथी हो तो किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं होंगे। महारथी को जब भी बाबा शब्द यूज करते हैं तो उसको क्या चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है। किसका? महारथी को। महारथी को एक्सप्लेन करने के लिए बाबा उन बातों को बताते ही है कि घोड़े सवार क्या है और प्यादे क्या है, वो आर्मी क्या है। जब उनकी बातें बाबा बताएंगे तभी महारथी क्या होता है, फोकस होता है। जैसे कहा था ना कि विदाउट बैकग्राउंड कोई इमेज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह महारथी की क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी होती है। और उनके अस्त्र शस्त्र भी अलग होते हैं। आप इमेजिन करो, युद्ध का मैदान है, आर्मी आगे है, पैदल है, उनके हाथ में तलवारें हैं। घोड़े सवार को देखो, घोड़े सवार के अस्त्र शस्त्र अलग हैं, उसके पास थोड़ा अस्त्र शस्त्र अच्छे होंगे। और जो महारथी है, जो हाथी पर बैठा हुआ है, उसके पास कौन सा शस्त्र होता है, तीर होता है, भाला होता है, हाँ पीछे होता है, सेफ होता है, हाँ तो सेफ होता है। तो बाबा ने कहा है कि ये जो समय है, ये महारथियों का समय है। यहाँ पर बाबा ने इस मुरली में लास्ट सो फास्ट की बात की है, कि जितने लास्ट है उतने आप फास्ट तरीके से क्या बन सकते हो, महारथी बन सकते हो। बाबा ने कहा कि अगर आप वशीभूत हो, इन चार बातें जो पहले बताई, अगर आप इनके वशीभूत हो, स्वभाव, संस्कार, वस्तु, वैभव, इनके आप वशीभूत हो, तो बाबा ने कहा कि वशीभूत माना भूत, लास्ट में भूत आता है। तो दूसरे को वशीभूत करने वाले खुद ही किसी के वश है, तो बाबा ने कहा जैसे कि भूत है, तो इस दूसरों को वशीकरण मंत्र देने वाले अगर खुद ही वशीभूत है, खुद ही मुक्त नहीं है, तो उसको महारथी कैसे कहेंगे, तो उसको योगी तू आत्मा कैसे कहेंगे, ये बाबा ने प्रश्न पूछा है। फिर इसमें बाबा ने कर्तव्य याद दिलाया कि उनके कर्तव्य क्या है। जैसे बच्चे का कर्तव्य होता है बाप को प्रत्यक्ष करना, न कि खुद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य होता है। तो बाबा ने कहा कि संशोज फादर, अपने आप को बाबा कहते, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या कर देते हैं कि अपने आप को प्रत्यक्ष करने की होड़ में लगे रहते हैं कि मैं कैसे प्रत्यक्ष बनूं। इसके लिए बाबा ने इसमें बताया कि बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि महारथी जो होंगे वो निर्माण होंगे, नम्रचित्त होंगे, वो जिद और सिद्ध के उनमें सिद्ध करने की लक्षण नहीं होंगे। तो ये जो महारथी है, निशानियां कि वो कैसे होंगे, एक तो वो ऊंची स्थिति पर होंगे और अपने आसन पर क्या होंगे, सेट होंगे। स्थिति बाबा ने बताया, सेटिंग बाबा सेट करते हैं और सेटिंग करते हैं। तो कभी सीट पर सेट दिखाई देते हैं तो कभी साइड में दिखाई देते हैं। तो महारथी माना अपने सीट पर सेट, क्योंकि वो जो आसन है वो डोलता रहता है, क्योंकि उसका वाहन चलता भी रहता है। तो अपने आसन पर कैसे स्थित होना है वो बात बाबा ने यहाँ पर बताई। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ऐसे सर्व इच्छाओं को समाने वाले बाप समान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सदा एक रस, एक सदा एक रस। चौथा जो है कि एक बल, पांचवा एक बल एक भरोसा, चौथा बाद में बताऊंगा, पांचवा एक बल एक भरोसा, छठा एकाग्रता, एकांतवासी, अंतर्मुखी, सातवा बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, और चौथा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा की जे 5th मार्च 1971 की मुरली है, मुरली का टाइटल है भट्टी की अलौकिक छाप। तो बाबा के सामने माताओं का ग्रुप है, तो इसमें पहली पॉइंट है भाग्य और सौभाग्य, सुहाग, भाग्य और सुहाग। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर दो बातें देख रहे हैं, पहला भाग्य और दूसरा सुहाग। तो बाबा ने कहा कि आप सभी मधुबन में भट्टी करने के लिए आए हो, तो अपनी इन दोनों बातों को अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हो, जान सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो कि भाग्य में क्या क्या मिला और सुहाग में कौन प्राप्त हुआ है। जैसे दो दिन पहले वरदान में था कि सुहाग में कौन मिला माताओं को, देवों के भी देव, देवों के देव। तो पहली पॉइंट थी भाग्य और सुहाग, दूसरी पॉइंट है दर्पण और याद का गोला। तो बाबा ने कहा कि अपने सुहाग और भाग को देखने के लिए बाप दादा आपको दर्पण दे रहे हैं, उस दर्पण में अपने सुहाग और भाग्य को अच्छी तरह से देख सकते हो, जान सकते हो। उसी में दूसरी पॉइंट है याद का गोला, योग का गोला। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना अपने साथ याद का गोला रखेंगे, अर्थात जितना उस याद की स्मृति में रहेंगे, तो उतना ही अपने भाग्य और सुहाग को जान सकेंगे, देख सकेंगे। जैसे आपके भविष्य यादगार में श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाते हैं, तो उसी प्रकार जितना आप संगम युग पर अपने भाग्य और सुहाग का जो याद का गोला उसको रखेंगे, तो अपना भाग्य और सुहाग उसको आप देख सकेंगे, और उतना ही भविष्य में आप श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। तो दूसरी पॉइंट थी दर्पण और याद का गोला। तीसरी पॉइंट है बाबा ने कहा कि जैसे आप मधुबन में आए हो, तो मधुबन जो भट्टी है, इसी भट्टी का, मधुबन भट्टी का मॉडल रूप बनाकर रखना। जहां आप रहते हैं अपने लौकिक परिवार में, जहां भी जिस स्थान पर, उस स्थान पर आप मधुबन भट्टी का जो है मॉडल रूप बनाकर रखना। तो बाप अजय मॉडल, तो बाबा ने कहा जो भट्टी में आप यहाँ पर अनुभव करते हो, जो भट्टी, जो मधुबन भट्टी का जो दिनचर्या है, यहाँ के रूटीन है, यहाँ का जो कायदे कानून है, नियम है, जो आप यहाँ पर, जो आपके यहाँ स्मृति रहती है, दृष्टि रहती है, वृत्ति रहती है, तो उसी को आप थप्पा लगा कर जाना, उसकी छाप लगा कर जाना, और उसको वहां पर आप हमेशा कायम रखना। तो यदि आप इसको कायम रखेंगे, अपनी वृत्ति में यहाँ की सारी बातें याद रखेंगे, तो जो लौकिक में आपके संबंध हैं, दृष्टि है, वृत्ति है, नीति रसम है, उसको आप चेंज कर सकेंगे, और वहां पर जो आने वाली समस्याएं हैं उन हर समस्या का आप सामना कर सकेंगे, कोई भी समस्या में आप हलचल में नहीं आएंगे, वृत्ति श्रेष्ठ है तो, और वृत्ति यदि साधारण है तो आने वाली समस्याओं में आप हलचल में आते रहेंगे। तो जी बाबा ने कहा कि ऐसे
स्थिति को बनाकर रखना जो आपके यहाँ मधुबन में है। चौथी बात है स्वमान। तो बाबा ने कहा कि आपका स्वमान है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान विजय रतन हो। तो बाबा ने कहा कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार के हमेशा स्मृति में रहना। इस अधिकार की स्मृति में रहेंगे तो हमेशा आप सफल होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये अधिकार जो आपको संगम पर मिला हुआ है, तो फिर आप ये नहीं कभी कह सकते हैं कि क्या करें कैसे करें, ना मालूम हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा कि ना मालूम शब्द ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा नहीं है। ज्ञानी अर्थात जिनको हर बात के बारे में पूरी नॉलेज है। बाबा ने कहा कि आप नॉलेज फुल हो, ब्राह्मण अर्थात नॉलेज फुल। ब्राह्मणों के जीवन में यदि असफलता मिलती है, किसी बात से हार होती है, तो उसका भी उनको ज्ञान होता है कि किस कारण से हार मिली है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी, समझदार, नॉलेजफुल। तो चौथी बात थी समान। पांचवी बात है, बाबा ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई या इस बच्चे का सार, तीन बातें उनको हमेशा याद रखना। और वो तीनों बातें हैं तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना क्या? पुराने संस्कारों को, पुराने संबंधों को। तो तोड़ना है पुराने संबंधों को, पुराने संस्कारों को, जो पुराने आदतें हैं उनको तोड़ना है। और जोड़ना क्या है? एक के साथ सर्व संबंध। और मोड़ना है तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। मोड़ना है संस्कारों को, संस्कारों को, आदतों को। तो बाबा ने कहा इन तीनों बातों को हमेशा साथ साथ तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। संस्कारों को मोड़ना, तो तीन बातों को हमेशा साथ साथ अप्लाई करना अपने जीवन में। कितना? पांच हो गया ना। छठी पॉइंट है स्मृति का तिलक। तो बाबा ने कहा कि तिलक जो है वो स्मृति की निशानी है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक लगाना। उसमें दो बातें बाबा ने कही कि यदि वो स्मृति का तिलक लगाएंगे तो हमेशा आप सफल होते रहेंगे। तो पहली बात है कि इन आंखों से आप इस दुनिया की जो भी बातें देखते हैं, चाहे संबंध है या दुनिया है, उसको देखते हुए हमेशा नई दुनिया के संबंध और नई दुनिया को देखते रहेंगे। और दूसरी बात है इन आंखों से आप जो देखते हैं उन वो सब विनाशी चीजें हैं, उनमें हर हमेशा विनाश की स्मृति रहे कि ये सब जो है वो सब खत्म होने वाले हैं, विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। तो इसका हमेशा तिलक लगा कर रखना। और लास्ट पॉइंट है जादूगर माताएं। तो बाबा ने कहा कि माताएं यदि मैदान पर आ जाएं तो माताएं बहुत कमाल कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया में जो वर्तमान समय तथाकथित जो अपने आप को शेर कहलाने वाले हैं, जो दुनिया के आगे दहाड़ मारने वाले हैं, बाबा ने कहा माता जिस बात में प्रूफ है वो उस बात में कमजोर हैं, कायर हैं। अर्थात दुनिया में जो साधु महात्माएं हैं, जिस बात में माताएं प्रूफ हैं, समर्थ हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहती हैं, उस बात में वो कमजोर हैं, कायर हैं। तो बाबा ने कहा कि माताएं अगर माताएं दहाड़ मारेंगी और माताएं इस बात में प्रूफ बनेंगी तो वो आपके आगे आकर के झुकेंगे, आपके चरणों में आकर गिरेंगे। तो बाबा ने कहा कि माताओं को ये जादूगरी दिखानी है। तो ये सात पॉइंट थे। पहले पॉइंट है भाग्य और सुहाग। दूसरी पॉइंट थी दर्पण और याद का गोला। तीसरी पॉइंट थी मधुबन बट्टी का मॉडल बनाकर रखना। चौथा है स्वमान कि हम विजय रतन हैं, कल्प कल्प के विजयी हैं। पांचवा है बट्टी की पढ़ाई का सार या शिक्षा, तीन बातें तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। और पांचवी छठवीं पॉइंट है स्मृति का तिलक और सातवीं पॉइंट जादूगर माताएं। ओम शांति।
ओम शांति। तो ये मुरलियां चल रही हैं। मुरली की डेट है 5 नवंबर 1970। तो मुरली को सात भागों में विभाजित किया गया है। तो इस मुरली में एक तो बाबा ने शक्ति की बात की है, दो मूर्त हैं, तीन एग्जाम्पल हैं, चार कुछ बातें हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक स्लोगन है। छठी बात में एक स्लोगन है और सातवीं एक कंप्लेंट है, उसमें छह होगी सात होगी आठ ना हो जाए, कहीं ज्यादा ही रखनी है ना। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने कही, परखने की शक्ति। तो स्वयं को परखने के बारे में बाबा ने कहा कि लाइट और माइट आप बच्चों ने अपने में कितनी धारण की है, या आप परख सकते हो या नहीं। लाइट अर्थात ज्ञान, और वो ज्ञान माइट में कितना कन्वर्ट हुआ है। जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन आती है, सर्कमस्टांस आते हैं, विघ्न आता है, तो उन विघ्नों को पार करने के लिए ज्ञान के आधार पर कितनी शक्ति अपने में ग्रहण की है, वो आप बच्चे अपने आप पे परखो। तो स्वयं को परखने की शक्ति के लिए बाबा ने ये पहली बात कही है। दूसरी बात है, दो मुहूर्त है इसमें, एक है साक्षात्कार मुहूर्त और दूसरा है पुरुषार्थी मुहूर्त। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे पुरुषार्थी मुहूर्त ही हो या साक्षात्कार मुहूर्त हो। जो बच्चे साक्षात्कार मुहूर्त रहेंगे वो ही दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे। तो फ्यूचर का साक्षात करने से पहले जो परखने की शक्ति से रिलेटेड है कि वर्तमान में जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, जो हमको नॉलेज मिली है, उस नॉलेज का साक्षात्कार हम पूरा दिन कितना करते रहते हैं। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल बाबा ने जोड़ा है फोटो का। तीन एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल फोटो के हैं और एक एग्जाम्पल टाइम से संबंधित है। तो जो पहला एग्जाम्पल है, बाबा ने कहा जैसे तुम बच्चे, यह संसार की बात कही है, फोटो खींचते हैं तो कितना ध्यान रखना पड़ता है फोटो से संबंधित। अगर थोड़ा भी हलचल होती है तो फोटो शेक हो जाती है, धुंधली हो जाती है, ठीक नहीं लगती है, फिर से दोबारा उसको ट्राई करना पड़ता है। तो ऐसे तुम बच्चे हमेशा ये समझो कि पुरुषोत्तम संगम युग, ये जो कल्याणकारी संगम युग है, ये ड्रामा रूपी कैमरे में आप बच्चों का एक एक सेकेंड का फोटो निकल रहा है। और इस फोटो के आधार पर, इस चित्र के आधार पर जो तुम बच्चों का चरित्र निर्माण हो रहा है, वही चरित्र का गायन और पूजन भविष्य में होगा। तो यहां ये बात कही और फोटो से रिलेटेड दूसरी और बात कही, एक एग्जाम्पल दूसरा, कि जैसे तुम बच्चे स्टेज पर ड्रामा करते हो तो कितना दूसरों को साक्षात्कार कराते हैं, तो कितना अटेंशन रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे एक एक सेकेंड इतना अटेंशन रखने की जरूरत है ताकि चरित्र श्रेष्ठ हो सके। और तीसरा एग्जाम्पल जो आगे दूसरी बात से रिलेटेड है वो बताएंगे। और एक स्लोगन है, डिले इज डेंजर। तो डिले इज डेंजर, बाबा ने कहा अगर यहां किसी भी बात में देरी की तो राज्य भाग्य में भी उतनी ही देरी से आएंगे, या आएंगे लेकिन वो राज्य भाग्य का जो सुख है वो भी उसी अनुपात में अनुभव करेंगे। तो कोई भी बात में देरी नहीं करनी है। तो ये हम अपने आप को जांच कर सकते हैं कि कौन कौन सी बात में हम देरी कर रहे हैं, या धारणाओं में, योग में, ज्ञान में, सेवा में, किसी भी बात में, सकाश देने में, कहां कहां हमारी देरी हो रही है। तो इसलिए डिले इज डेंजर। इसमें कहानी भी है ना बंदर और बंदरी की, वो सब जानते होंगे। आकाशवाणी हुई बंदरी और बंदर को के छलांग मार दो, अगर तुरंत छलांग मार देंगे तो परा और परी बन जाएंगे। तो बंदरी ने तो मार दी, तुरंत परी बन गई, लेकिन बंदर थोड़ा सोच रहा था, तो अब सोचते सोचते टाइम तो निकल गया, जैसे मारी सलाम धड़ाम करते सारे हड्ड गुड टूट गए उसके, तो परी की बजाय परा ही बन गया वो। तो डिले इज डेंजर अर्थात समय जो है वो अभी है, नाउ। तो हमको समय को वेस्ट नहीं करना है। डिले इज डेंजर अर्थात विलंब खतरनाक है, कोई भी बात में विलंब करते हैं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक ये बात थी। एक है फिर कंप्लेंट की बात है कि बच्चे तो बाबा को कहते हैं कि बच्चे कंप्लेंट बनना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में उलाने भी है, शिकायतें भी हैं, गिले शिकवे भी हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं कर्मातीत बनने में, और वो कंप्लेंट है व्यर्थ संकल्पों की। तो बाबा ने इन व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के युक्तियां बहुत सारी बताई हैं। इसी के साथ जो तीसरा एग्जाम्पल था, बाबा ने यहां कहा कि जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोग अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं, उनका एक एक सेकंड जो है फिक्स होता है, उसी टाइम के अनुसार उनकी दिनचर्या चलती है, उनके सारे क्रियाकलाप चलते हैं ताकि समय वेस्ट नहीं हो। तो तुम बच्चों को भी अपना टाइम टेबल सेट करना है, सवेरे से लेकर रात्रि तक कहां कहां हमारा टाइम जा रहा है, और वो टाइम जो चार बातें जो बताई थी बीच में, वो चार बातों के लिए टाइम, मिलन, वर्णन, लगन, मगन। तो ये चार बातों में, लगन तो लगाते हैं लेकिन लगन लगाने में ही बच्चों का टाइम चले जाता है और फिर मगन स्थिति हो नहीं पाती है, और साथ में दो बातें जो वर्णन अर्थात सर्विस, हम सर्विस कितनी करते हैं, और मिलन। तो ये चारों बातों का बाबा ने कहा अपना टाइम सेट करो। जैसे योग में बैठते हैं तो योग में अगर हमारा टाइम फिक्स है कि इतना समय हमको ये करना है, इन संकल्पों के आधार पर मेडिटेशन करना है, इन संकल्पों के आधार पर सेवा करनी है, तो हमारा वो योग है वो एक संतोषजनक होता है, शक्तिशाली होता है। अगर बिना किसी लक्ष्य के हम योग में बैठ जाते हैं तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात्रि तक, एक 1970 की लास्ट मुरली है शायद, 31 बारह 70 की मुरली है, सवेरे से लेकर रात्रि तक परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो कि सवेरे अवतरित हुआ हो आत्मा हो, फिर मुरली के समय, फिर कर्मयोग करते समय, फिर सेवा क्षेत्र के आते समय, फिर रात को सोते समय कैसे करना, वो सारी दिनचर्या के ऊपर आधारित मुरली है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये था कि अपना टाइम की बुकिंग करो, अपॉइंटमेंट की डायरी रखो अपनी। तो अपॉइंटमेंट की डायरी रखेंगे तो फिर ये जो कंप्लेंट है सारी खत्म हो जाएगी, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंटें। तो ये सात बातें थी। सबसे पहली बात थी परखने की शक्ति, स्वयं के अंदर कितनी धारण की है। दूसरों को परखने से पहले स्वयं को परखने की अति आवश्यकता है। और दूसरी बात थी दो मूर्त, पुरुषार्थ मूर्त है, पुरुषार्थ की उतराई चढ़ाई चढ़ रही है, या फिर साक्षात्कार मूर्त है। जो बच्चे संपूर्ण स्थिति में स्थित रहेंगे, बाबा ने कहा वही बच्चे साक्षात्कार करा पाएंगे। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी तीन एग्जाम्पल, दो तो फोटो से संबंधित, एक टाइम से संबंधित। फोटो अर्थात फोटो खिंचाते समय जैसे हलचल होती है तो उस फोटो इतनी अच्छी नहीं आती है। और दूसरी फोटो से संबंधित, जैसे तुम बच्चे ड्रामा करते हो स्टेज पर तो अपना कितना अटेंशन रखते हो। और तीसरी बात थी टाइम से, बड़े आदमी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, एक एक सेकंड उनका कीमती होता है, तो तुम संसार में बड़े ते बड़े हो। और तीसरी चौथी बात थी डिलेज, नहीं चौथी बात थी चार बातें, और पांचवी थी डिलेज डेंजर, और छठी थी कंप्लेंट, और चौथी में चार बातें मिलन वर्णन मगन लगन, ये चार बातें हैं, और डिलेज डेंजर स्लोगन। तो इस स्लोगन में बाबा ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने तो कहा कि आना और जाना ये स्लोगन, लेकिन बाबा ने कहा आना और जाना के साथ साथ ये स्लोगन डिलेज डेंजर, इसको हमेशा स्मृति में रखो। और कंप्लेंट समाप्त करनी है, कंप्लीट बनने हैं, उसके लिए व्यर्थ संकल्प जो है उनको समाप्त करने के लिए अपना टाइम टेबल बनाओ, अपॉइंटमेंट की डायरी रखो। तो ये सात बातें थी जिनका हमको अनुसरण करना है। ओम शांति।